परिचय। ये रचना बाइबल इतिहास के उन विषयों को जो अपने आप में नए नहीं हैं, इस तरह प्रस्तुत करती है कि उन्हें एक विशेष महत्व मिलता है। ये कार्यशीलता को उजागर करती है और कई गतिविधियों के महत्वपूर्ण प्रभाव को बताती है और संक्षिप्त रूप से उल्लिखित बाइबल के महत्वपूर्ण लेखों पर प्रकाश डालती है। इस प्रकार उन दृश्यों में वो महत्व और जीवंतता है जो नया और चिरस्थायी प्रभाव डालते हैं। इस तरह के प्रकाश से परमेश्वर का चरित्र और उसके उद्देश्य पूरी तरह उजागर होते हैं। शैतान के छल कपट और वह साधन जिससे उसको अंत में परास्त किया जाएगा सामने आते हैं। मानव हृदय की कमजोरियां सामने आती हैं और हमें पता चलता है कि किस तरह परमेश्वर का अनुग्रह हमें बुराई पर विजय पाने के लिए सक्षम बनाता है। ये सब वचन की सच्चाई को मनुष्य पर प्रकट करने में परमेश्वर के उद्देश्य के अनुरूप है। जब पवित्र शास्त्र की सहायता से परीक्षण किया जाता है, तब उस एजेंसी का पता चलता है जिसने ये रहस्य उद्घाटन किया है, और ये तरीका परमेश्वर आज भी मनुष्य के पुत्रों को निर्देश देने के लिए अपनाता है। आदि में मानव अपनी पवित्रता और निष्कपटता में परमेश्वर से व्यक्तिगत निर्देशन पाता था, जैसा कि वर्तमान में नहीं। परंतु फिर भी मनुष्य एक ईश्वरीय शिक्षक से वंचित नहीं है, क्योंकि उसे ये पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का प्रतिनिधि है, के रूप में प्रदान किया गया है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि परमेश्वर के अनुयायियों के पास एक निश्चित ईश्वरीय प्रकाश का विशेषाधिकार है और पवित्र आत्मा के सहयोगी बनाए जाने के कारण वे प्रबुद्ध हैं। इब्रानियों 10 आयत 32, 6 आयत 4। यहुन्ना भी कहता है, किंतु तुम्हारा तो उस परम पवित्र ने आत्मा के द्वारा अभिषेक कराया है। यीशु मसीह अपने चेनों को छोड़ने वाला था। उसने उनसे वायदा किया, मैं परम पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक देगा ताकि वो सदा तुम्हारे साथ रह सके। यूहन्ना 14 आयत 16। ये बताने के लिए कि किस तरह कलीसिया में ये प्रतिज्ञा का पूर्ण होना निश्चित था, पौलुस अपनी दो पत्रियों में घोषणा करता है कि अंत समय तक कलीसिया को आत्मा के वरदान दिए गए हैं। कुरंथियों 12, इफीसियों 4 आयत 8 से 13, मत्ती 28 आयत 20। इसके अलावा कई स्पष्ट भविष्यद्वाणियां घोषित करती है कि अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा का विशेष प्रवाह होगा और यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले कलीसिया के पास यीशु मसीह की साक्ष्य होगी। प्रेरितों के काम 2 आयत 17 से 20, 39, पहला कुरंथियों 1 आयत 7, प्रकाशित वाक्य 12 आयत 17, प्रकाशित वाक्य 19 आयत 10। इन तथ्यों में हम परमेश्वर का अपने लोगों के प्रति दायित्व और प्रेम का प्रमाण देखते हैं, क्योंकि कलीसिया को उसके अनुभव के किसी भी अन्य भाग से अधिक अंतिम समय की आपदाओं का सामना करते समय कार्यविधि के साधारण ही नहीं वरन असाधारण तरीकों में भी पवित्र आत्मा की एक सांत्वना देने वाले, एक शिक्षक और एक मार्गदर्शक के रूप में उपस्थिति की आवश्यकता होगी। पवित्र शास्त्र उन विभिन्न माध्यमों की ओर इशारा करता है जिनके द्वारा पवित्र आत्मा मानव जाति का मार्गदर्शन करने और उनकी समझ को ज्योतिमान करने हेतु उनके मन और मस्तिष्क पर काम करेगा। स्वप्न और ईश्वरीय दर्शन इसका उदाहरण है। इस तरह परमेश्वर मनुष्य के पुत्रों के साथ संपर्क करेगा। परमेश्वर का वायदा है, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बात करूंगा। गिनती 12 आयत 6। इसलिए परमेश्वर ने कहा, बोर के पुत्र बिलाम की ये वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थीं उसी की ये वाणी है, ईश्वर के वचनों को सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान को जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की ये वाणी है। गिनती 24 आयत 15 16। इस प्रकार यह जानने के लिए कि परमेश्वर ने मनुष्य को परक अवधि के दौरान कलीसिया में पवित्र आत्मा के स्वयं प्रकट होने की योजना किस हद तक बनाई, पवित्र शास्त्र की गवाही का विवेचन करना अत्यंत रुचि का विषय बन जाता है। उद्धार की योजना के बनाए जाने के पश्चात परमेश्वर, जैसा कि हमने देखा, अभी भी अपने पुत्र की सेवकाई और पवित्र दूतों के माध्यम से मनुष्य के साथ संपर्क कायम रख सकता था, हालांकि पाप ने मनुष्य और उसके बीच एक खाई पैदा कर दी थी। कभी कभी वह मनुष्य से रूबरू बात करता था, जैसे कि मूसा के साथ, लेकिन अधिकतर वह स्वप्न और ईश्वरीय दर्शन का तरीका अपनाता था। संचार का यह साधन पवित्र लेख में कई जगह वर्णन किया गया है। हनोक, जो आदम से सातवीं पीढ़ी में था, यीशु मसीह के दूसरे आगमन की अपेक्षा में था। देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। यहूदा 1:14। भक्तजन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर की ओर से बोलते थे। दूसरा पत्रस 1:21। यद्यपि लोगों की आत्मिकता कमजोर होने पर भविष्यद्वाणी की आत्मा का परिचालन गायब होना प्रतीत होता है, लेकिन वो उन सारे संकटों के समय जिनका कलीसिया ने अनुभव किया और उन सभी युगों में जो बदलाव के साक्षी हैं विद्यमान रही है। जब यीशु के अवतार के लिए उल्लेखनीय युग आया, तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता ने पवित्र आत्मा से भरपूर होकर भविष्यद्वाणी की। लूका 1:67। शिमोन को बताया गया कि जब तक वो प्रभु को नहीं देख लेगा, तब तक वो मृत्यु नहीं देखेगा। और जब यीशु के माता पिता उन्हें यहोवा को अर्पण करने मंदिर में लाए, तब शिमोन आत्मा के प्रभाव से मंदिर में आया, बालक यीशु को अपनी गोद में लिया और उसे आशीषित करते हुए उससे संबंधित भविष्यद्वाणी की। उसी समय हन्ना, जो एक नबी थी, आई, और जो लोग यरूशलेम के छुटकारे की बाट जो रहे थे, उन सबको उस बालक के बारे में बताया। लूका 2:26-36। यीशु के अनुयायियों द्वारा प्रचार के दौरान पवित्र आत्मा के प्रवाह की घोषणा नबी ने इन शब्दों में की। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यद्वाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधकारमय होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। योएल 2:28-31। पेंटिकास्ट के दिन पतरस ने उस समय के सुंदर दृश्य का वर्णन करते हुए इस भविष्यद्वाणी को उद्धृत किया। आग के समान दो भागों वाली जीभ हर चेले पर बैठ गईं और वे पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अन्य भाषाओं में बोलने लगे। और जब दूसरे लोगों ने प्रेरितों का उपहास करते हुए कहा, ये सब कुछ ज्यादा ही नई दाखरस चढ़ा गए हैं, पतरस ने उत्तर दिया, ये लोग पिए हुए नहीं हैं जैसे कि तुम समझ रहे हो, क्योंकि अभी तो दिन का तीसरा पहर ही है, बल्कि ये वो बात है जिसके बारे में योएल नबी ने कहा था। और फिर उसने भविष्यद्वाणी को उद्धृत किया, जैसे कि योएल की पुस्तक में पाई जाती है। लेकिन बाद में शब्द के बदले पतरस ने अंतिम दिनों में शब्दों का प्रयोग किया, ताकि हम इस तरह पढ़ें, अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं सभी मनुष्यों पर अपनी आत्मा उड़ेल दूंगा। इससे साबित होता है कि पवित्र आत्मा के प्रवाह से जुड़ी हुई भविष्यद्वाणी उस दिन से पूरी होना शुरू हुई, क्योंकि कोई पुरनिय स्वप्न नहीं देख रहे थे और ना ही जवान युवक और युवतियां दर्शन देख रहे थे या भविष्यद्वाणी कर रहे थे, ना ही लहू और आग के अजूबे और धुएं के स्तंभ प्रकट हुए, और सूर्य अंधकारमय नहीं हुआ, ना ही चंद्रमा लहू जैसा हुआ। लेकिन फिर भी जो वहां देखा गया वो योएल की भविष्यद्वाणी के पूरे होने से जुड़ा हुआ था। ये भी प्रमाणित होता है कि पवित्र आत्मा के उंडेले जाने से संबंधित भविष्यद्वाणी इस एक प्रकटीकरण में समाप्त नहीं हो जाती, क्योंकि ये समय से लेकर प्रभु के आगमन के शुभ दिन तक के दिनों के लिए है। लेकिन पेंटिकॉस्ट का दिन योएल के अलावा औरों की भविष्यद्वाणियों से भी जुड़ा था। यीशु मसीह के अपने कहे वचन भी इस दिन पूरे हुए। सलीब पर चढ़ने से पहले अनुयायियों के साथ अपने आखिरी संवाद में उसने कहा, मैं परम पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक देगा ताकि वो सदा तुम्हारे साथ रह सके। यूहन्ना 14:161। किंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, तुम्हें सब कुछ बताएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसे तुम्हें याद दिलाएगा। किंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें पूर्ण सत्य की राह दिखाएगा। यूहन्ना 16:13। जी उठने पश्चात यीशु ने अपने चेलों से कहा, और अब मेरे परम पिता ने मुझसे जो प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा, किंतु तुम्हें इस नगर में उस समय तक ठहरे रहना होगा जब तक तुम स्वर्ग की शक्ति से युक्त न हो जाओ। लूका 24:49। पेंटिकॉस्ट के दिन चेले स्वर्ग की शक्ति से युक्त हो गए, लेकिन यीशु मसीह की ये प्रतिज्ञा उस अवसर तक ही सीमित नहीं थी। यीशु ने उन्हें यही प्रतिज्ञा दूसरे रूप से दी। याद रखो, इस सृष्टि के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मत्ती 28:20। मरकुस बताता है कि किस तरह यीशु उनके साथ हमेशा रहेगा। वो कहता है, उसके शिष्यों ने बाहर जाकर हर जगह उपदेश दिया, उनके साथ प्रभु काम कर रहा था। प्रभु ने वचन को आश्चर्य कर्म की शक्ति से युक्त करके सत्य सिद्ध किया। मरकुस 16:20। और पेंटिकोस्ट के दिन पत्रस ने पवित्र आत्मा की कार्यविधि की नित्यता की गवाही दी, जिसका वो साक्षी था। जब अभिशस्त यहूदियों ने प्रेरितों से पूछा, हमें क्या करना चाहिए, पत्रस ने उत्तर दिया, मन फिराओ और अपने पापों की क्षमा पाने के लिए तुम में से हर एक को यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, फिर पवित्र आत्मा का उपहार पा जाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए, तुम्हारी संतानों के लिए और उन सब के लिए है जो बहुत दूर स्थित है। ये प्रतिज्ञा उन सब के लिए है जिन्हें हमारा प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाता है। प्रेरितों के काम 2:37-39। ये निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए, जब तक अनुग्रह मनुष्य को मसीह के क्षमाशील प्रेम को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करता रहेगा, पवित्र आत्मा के परिचालन को उसके विशेष प्रदर्शनों में भी संभव बनाता है।
28 वर्ष पश्चात पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखे अपने पत्र में कलीसिया के समक्ष उस प्रश्न पर एक औपचारिक तर्क रखा। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। 1 कुरिन्थियों 12:1। इस बात को वो इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि इस विषय को मसीही कलीसिया में समझा जाना चाहिए। ये कहने के बाद कि यद्यपि आत्मा एक है, इसमें संचालन की विविधता है, और ये समझाते हुए कि वे विविधताएं क्या हैं, पौलुस ने मानव शरीर व शरीर के विभिन्न अंगों का उदाहरण दिया, ये बताने के लिए कि कलीसिया का गठन भी अलग अलग योग्यताओं और वरदानों से हुआ है। जैसे शरीर के हर अंग का अलग कार्य है और दूसरे अंगों के साथ मिलकर वो एक सामंजस्यपूर्ण इकाई बनाता है, उसी तरह एक उत्तम धार्मिक संस्था का गठन करने के लिए पवित्र आत्मा विभिन्न प्राणियों के माध्यम से काम करती है। पौलुस फिर आगे कहता है, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। कलीसिया में कुछेक को नियुक्त करने का तात्पर्य यहीं तक सीमित नहीं है कि यदि परिस्थितियां पक्ष में हों तो आत्मिक वरदानों को प्रकट होने का रास्ता खुला है, बल्कि इसका अभिप्राय है कि उन्हें कलीसिया के सच्चे आध्यात्मिक संगठन के स्थायी अंग बनाना था, और यदि ये सक्रिय संचालन में नहीं होंगे तो कलीसिया भी उस मानव शरीर की स्थिति में होगा जो दुर्घटना या बीमारी के कारण असहाय और अपंग हो जाता है। एक बार कलीसिया में नियुक्त होने के बाद ये वरदान तब तक रहना चाहिए जब तक इन्हें औपचारिक रूप से ना हटाया जाए, लेकिन ऐसा कोई लेख नहीं कि इन्हें कभी हटाया गया हो। 5 वर्ष पश्चात इसी प्रेरित ने इन्हीं वरदानों के संबंध में इफिसियों को लिखा और वरदानों का उद्देश्य बताते हुए अप्रत्यक्ष रूप से बताया कि उस उद्देश्य के संपूर्ण होने तक उन्हें लगे रहना है। इफिसियों 4:8-11-13 में वो कहता है कि वो ऊंचे पर चढ़ा और बंधुवाई को बांध ले गया और मनुष्यों को वरदान दिए, और उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त किया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। जब तक कि हम सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाएं।
एपोस्टोलिक युग में जिस एकता की स्थिति की कल्पना की गई थी, कलीसिया वहां तक नहीं पहुंची। इस युग के बहुत जल्द बाद ही कलीसिया पर आध्यात्मिक स्वधर्म त्याग का ग्रहण लग गया और निश्चय ही गिरावट की स्थिति के दौरान मसीह की ये परिपूर्णता और विश्वास की एकता प्राप्त नहीं हुई, और ये तब तक नहीं होगा जब तक अनुग्रह का संदेश हर कुल, समाज के हर वर्ग, हर त्रुटिपूर्ण संस्था में से उन लोगों को जमा न कर ले जो सुसमाचार सुधारों में पूर्ण है और परमेश्वर के पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा में है। और वास्तव में अपने अनुभव में कलीसिया को अपने लिए सांत्वना और मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और संरक्षण हेतु हर उस एजेंसी की जरूरत तब पड़ेगी जब अनुभव और कुटिलता के कार्यों के लिए प्रशिक्षण द्वारा अच्छी तरह परिपूर्ण शैतानी शक्तियां अपने पाखंड की अति उत्तम रचना से चुने हुए लोगों को भी अगर संभव हुआ तो धोखा देगा। इसलिए बड़े उचित रूप से पवित्र आत्मा के प्रवाह की भविष्यवाणी की गई है ताकि अंतिम समय में कलीसिया का भला हो सके।
आमतौर पर मसीही जगत के वर्तमान साहित्य में अक्सर पढ़ाया जाता है कि आत्मा के वरदान केवल एपोस्टोलिक युग के लिए थे और ये केवल सुसमाचार के रोपण के लिए दिए गए थे तथा सुसमाचार के स्थापित होने पश्चात इनकी जरूरत नहीं थी। फलस्वरूप ये कलीसिया से जल्द ही गायब हो गए। लेकिन प्रेरित पौलुस ने अपने समय के मसीही लोगों को चेतावनी दी कि अधर्म का रहस्य पहले से ही कार्यशील था और उसके जाने के बाद खतरनाक भेड़िये उनके बीच प्रवेश करेंगे और वो भेड़ों को भी नहीं छोड़ेंगे, और ये कि उन्हीं के बीच से ऐसे मनुष्य उठेंगे जो शिष्यों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। प्रेरितों के काम 20 आयत 29 30। इसलिए ये असंभव है कि जिन वरदानों को कलीसिया में बुराई से बचाव के लिए रखा गया था उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था और उनकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी उपस्थिति और सहायता की आवश्यकता प्रेरितों के स्वयं कार्यशील होने के समय से ज्यादा इन परिस्थितियों में थी। पौलुस द्वारा कुरिन्थियों को लिखे पत्र के एक अन्य कथन से प्रतीत होता है कि वरदानों की अस्थायी निरंतरता की बहुचर्चित धारणा सही नहीं हो सकती। यह वो अंतर है जो पौलुस वर्तमान असिद्ध अवस्था और महिमावान अमर अवस्था के बीच बताता है। पहला कुरिन्थियों 13 आयत 9-10 में वो कहता है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। बाल्य अवस्था के विचारों और उन्हें कार्यरत करने की क्षीणता और अपरिपक्वता का उदाहरण देते हुए वो इस वर्तमान अवस्था को समझाता है और इसकी तुलना पुरुषत्व की अवस्था से करता है, जिसमें बेहतर परिपक्वता, दूरदर्शिता और शक्ति होती है, और वो उन वरदानों को उन चीजों की श्रेणी में रखता है जिनकी आवश्यकता इस वर्तमान असिद्ध स्थिति में है। लेकिन जब सिद्ध अवस्था आएगी इनके लिए हमारे पास अवसर नहीं होगा। पद 12 में वे कहते हैं, अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय इसे पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। फिर वो बताता है कि कौन से विनीत भाव सनातन अवस्था के अनुकूलित हैं और क्या विश्वास, आशा, उदारता या प्रेम विद्यमान होंगे। ये तीन पर इनमें सबसे महान उदारता है। इससे पद 8 की भाषा समझ आती है, प्रेम कभी टलता नहीं। इसका तात्पर्य है कि उदारता प्रेम की नैसर्गिक भावना हमेशा के लिए रहेगी। ये मानव जाति की आगामी अमर अवस्था का सर्वोच्च गौरव है। भविष्यद्वाणियां हों तो समाप्त हो जाएंगी। इसका तात्पर्य है कि समय आएगा जब भविष्यद्वाणियों की आवश्यकता नहीं होगी और भविष्यद्वाणी का वरदान कलीसिया में सहायता के रूप में प्रयोग नहीं होगा। भाषाएं हों तो जाती रहेंगी। इसका तात्पर्य है कि अन्य भाषाओं में बोलने का वरदान काम नहीं आएगा। ज्ञान हो तो मिट जाएगा। इसका तात्पर्य है कि ज्ञान काल्पनिक नहीं बल्कि आत्मा का विशेष वरदान होते हुए सनातन जगत में हमें मिले सिद्ध ज्ञान के आगे अनावश्यक हो जाएगा। अब अगर हम ये मानते हैं कि एपोस्टोलिक युग के साथ वरदान समाप्त हो गए क्योंकि उनकी अब आवश्यकता नहीं थी, तो हम स्वयं को उस पद्धति के लिए प्रतिबद्ध कर देते हैं कि एपोस्टोलिक युग कलीसिया का वो कमजोर और बचकाना युग था जब सब कुछ धुंधला सा था। लेकिन उसके बाद का युग जिसमें खतरनाक भेड़ियों द्वारा भेड़ों का शिकार होना था, अनुयायियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कलीसिया ही में से मनुष्यों को उठाना था, वो सिद्ध ज्योति और ज्ञान का युग था जिसमें एपोस्टोलिक युग के असिद्ध बचकाना और अंधकारपूर्ण ज्ञान की जगह न थी। क्योंकि याद रहे, वरदानों की समाप्ति सिद्धता की स्थिति पर पहुंचने के बाद ही होती है। लेकिन कोई भी सौभ्यतावश ये धारण नहीं रखेगा कि एपोस्टोलिक युग आत्मिक उन्नति में अपने उत्तराधिकारी युगों से तुच्छ था, और यदि वरदानों की आवश्यकता उस समय थी तो उनकी आवश्यकता आज भी है।
कुरंथियों को इफ्सियों को लिखे अपने पन्नों में प्रेरित जिन माध्यमों को कलीसिया में नियुक्त वरदानों का नाम देता है, उन वरदानों को हम उपदेशक, शिक्षक, सहायक और सरकार के रूप में पाते हैं और स्वीकार करते हैं कि ये कलीसिया में अभी भी बने हुए हैं। फिर विश्वास, चंगाई, भविष्यवाणी इत्यादि को क्यों नहीं स्वीकारें? सीमाबद्ध करने के लिए कि कौन सक्षम है, कौन से वरदान कलीसिया से बाहर हो गए हैं, जबकि आरंभ में सभी वरदानों को बराबरी से नियुक्त किया गया था। प्रकाशित वाक्य 12 आयत 17 को भविष्यवाणी का दर्जा दिया गया है, जो बताता है कि अंतिम समय में वरदानों को पुनः स्थापित किया जाएगा। इसकी गवाही के परीक्षण से इस धारणा की पुष्टि हो जाएगी। यह पद स्त्री के बीज और बकिया कलीसिया के बारे में बात करता है। स्त्री कलीसिया का चिन्ह है, बीज कलीसिया को संगठित करने वाले प्रत्येक सदस्य है, और बकिया मसीही लोगों का आखिरी वंश होगा। ये वो लोग होंगे जो यीशु के दूसरे आगमन के समय धरती पर जीवित होंगे। इस पद में आगे लिखा है कि ये परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और इनके पास यीशु की गवाही है। प्रकाशित वाक्य 19 की गवाही को भविष्यवाणी की आत्मा कहा गया है। इसे पहला कुरंथियों 12 आयत 9 10 में कथित वरदानों में भविष्यवाणी का वरदान समझना चाहिए। कलीसिया में वरदानों की नियुक्ति से ये तात्पर्य नहीं है कि हर व्यक्ति को उन्हें प्रयोग में लाना था। यहां प्रेरित में कहता है, क्या सब प्रेरित, क्या सब नबी, क्या सब शिक्षक इत्यादि। इसका उत्तर है नहीं, सब नहीं। लेकिन वरदान कलीसिया में परमेश्वर की इच्छानुसार विभाजित है, पहला कुरंथियों 12 आयत 7 11। फिर भी वरदानों को कलीसिया में नियुक्त किया गया, और यदि कलीसिया के एक भी सदस्य के पास वरदान है तो वो वरदान कलीसिया में है या वो कलीसिया के पास है। इस कारण आखिरी पीढ़ी के पास यीशु की गवाही या भविष्यवाणी का वरदान होना था, जैसा कि माना जाता है कि अभी भी है। पवित्र शास्त्र का एक और भाग जो निस्संदेह अंतिम समय के संदर्भ में लिखा गया है, इसी तथ्य को स्पष्ट रूप से सामने लाता है। एक थिस्सलुनीकियों 5 का आरंभ प्रेरित इस प्रकार करता है, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम स्वयं ठीक से जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। चौथे पद में वो कहता है, पर हे भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर की नाई आ सके। फिर वो उन्हें उस घटना के दृष्टिकोण से विविध चेतावनियां देता है, जैसे कि पवित्र आत्मा के कार्य का दमन मत करते रहो, नबियों के संदेशों को कभी छोटा मत जानो, हर बात की असलियत को परख कर देखो, जो उत्तम है उसे ग्रहण किए रहो, पद 19 से 20। पद 23 में वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर स्वयं तुम्हें पूरी तरह पवित्र करे, पूरी तरह उसको समर्पित हो जाओ और तुम अपने संपूर्ण अस्तित्व अर्थात आत्मा, प्राण और देह को प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूर्णतः दोष रहित बनाए रखो। इन विचारों के आधार पर क्या हमारा यह विश्वास करना उचित नहीं कि भविष्यवाणी का वरदान अंतिम दिनों में कलीसिया में प्रकट होगा और उसके द्वारा काफी मात्रा में प्रकाश फैलेगा और यथासमय अनुदेश दिए जाएंगे? सभी बातों को प्रेरित के अनुसार मानना है, असलियत को परखो, जो उत्तम है उसे ग्रहण किए रहो, और उद्धारकर्ता के मानक से परीक्षित होने के लिए उनके फलों से तुम उन्हें जानोगे। भविष्यवाणी के वरदान के प्रत्याक्षीकरण हेतु इस मानक को मान्यता देते हुए हम इस पुस्तक का विवेचन करने का आग्रह उन लोगों से करते हैं जो ये विश्वास करते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है
और कलीसिया वह देह है जिसका यीशु मसीह है। अरिया स्मिथ।